पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण का आठवां श्लोक। बाष्पम धूमतया बुध्वा तत्रांगारानुमानतः वन्यदृच्छया लब्ध स संवादी भ्रमो मतः। बाष्पम धूमतया बुध्वा तत्रांगारानुमानतः वन्यदृच्छया लब्ध स संवादी भ्रमो मतः। इसके पहले प्रत्यक्ष संवादी भ्रांति का दृष्टांत देके समझाया था, है ना, कि प्रसंग यह चल रहा आपके सामने कि जिसने श्रुति उपनिषद वेद वेदांत की बात तो खूब श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, विचार कर लिया, फिर भी जीवन में अपरोक्षानुभूति नहीं हो रही है। आपने वेदांत खूब श्रवण किया, वेदांत श्रवण करने के बाद भी जीवन में अपरोक्षानुभूति नहीं हो रही है, तो उसके प्रतिबंधक बुद्धिमांद्य, विषयाशक्ति, दुराग्रह आदि हैं, तो उनके निवृत्त करने के लिए उपासना बतला रहे। उपासना कैसी? तो ब्रह्म फलक। उपासनाओं के विषय में बताया था कि दो तरह की भ्रांति होती है। एक होती है संवादी भ्रांति, दूसरा विसंवादी। संवादी ब्रह्म का मतलब होता है सफल प्रवृत्ति, विसंवादी बोलते निष्फल, भ्रांति बोलते हैं अतस्मिनी तद बुद्धि को। जैसे सांप के अभाव वाले रज्जु में सांप बुद्धि का नाम भ्रांति, तद बोलते वह, अतद बोलते वह नहीं। हिंदी में लगाओ तो तद मतलब वह, अतद मतलब वह नहीं। तो अतस्मिन मतलब कि जो वह नहीं है, मतलब जो नहीं है उसमें जिस चीज की भ्रांति हो उसको भ्रांति उसको बोलते। जैसे कि सांप के अभाव वाले रस्सी में, रस्सी कभी सांप हो नहीं सकती, तो अतस्मिन हो गया रज्जु रस्सी, उसमें सांप की बुद्धि का नाम भ्रांति। ऐसे ही यहां पर मणि की प्रभा मतलब किरण, ज्योत्सना या रोशनी, तो मणि के रोशनी में मणि बुद्धि का होना भ्रांति है। इस भ्रांति का नाम संवादी भ्रांति। इस संवादी भ्रांति से लक्ष्य की मणि की प्राप्ति हो जाती। ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में जो पाषाण खंड है, नर्मदेश्वर है या सालग्राम या लकड़ी की जो मूर्तियां हैं, तो है तो लकड़ी की मूर्ति, पाषाण खंड है, नर्मदा पाषाण खंड है, सालग्राम गंडकी का एक पत्थर विशेष है, उसमें भगवत तत्व का अभाव होने पर भगवत्ता बुद्धि का नाम हो गया संवादी। ईश्वरत्व के अभाव वाले लकड़ी में, पत्थर में, मिट्टी में, ऐसा लो, ईश्वरत्व के अभाव वाले लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे मिट्टी की मूर्ति जो बनाते दशहरा में मिट्टी की, दुर्गा जी की प्रतिमा, गणेश जी की, तो लकड़ी, पत्थर, मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उसमें भगवतत्व के अभाव वाले लकड़ी, पत्थर, मिट्टी में जो भगवतत्व बुद्धि है कि गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, विष्णु भगवान है, शिव जी हैं, इसका नाम संवादी भ्रम है। इसी को छांदोग्य उपनिषद में संपत उपासना कहा। संपत संपत उपासना बोलते हैं कि आप किसी चीज का आरोप करके उसका चिंतन। उपासनाएं दो है मुख्य, संपत और प्रतीक। वैसे उपासना कुल मिला के तीन होती, कर्मंगा बद्ध उपासना है ना, इसके बाद है संपत उपासना, आंग्रह उपासना आखिरी है। तो संपत उपासना में आरोप की प्रधानता होती है, आंग्रह उपासना में आप ब्रह्म को प्रधानता देते हैं, ब्रह्म का चिंतन अहम रूप से। कर्मंगाबद्ध उपासना में कर्म के अंग भूत जो उपासनाएं हैं उनकी प्रधानता, जैसे प्राण की उपासना है तो उद्गीत नामक कर्म है, उद्गीत नामक कर्म है उस कर्म में प्राण की उपासना की जाती, इसको बोलते हैं कर्मंगाबद्ध उपासना। हाँ, जैसे उद्गीत कर्म हो गया, ज्योतिषत्व में कर्म हो गया, उसमें किसी विशेष की उपासना करें, प्राण की उपासना करें, मन की उपासना। पर संपत में आरोप करते हैं, जैसे मान लो हमने कहा मनो ब्रह्म इत्युपासित, ये संपत उपासना। देखिए मन में ब्रह्मत्व का भाव है, मन तो मन है, ब्रह्म तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म के अभाव वाले मन में ब्रह्म का आरोप करके चिंतन करने का नाम संपत उपासना। इसी को संवादी भ्रम बोलते हैं पंदशीकार। आंग्रह उपासना सीधी है अहम ब्रह्मास्मि। तो संवादी भ्रम के द्वारा आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। और विषमवादी बोलते हैं किसी मंदिर के झरोखे में दीपक जल रहा है, आपने दीपक के रोशनी को मणि मान लिया और मणि मानकर दौड़कर जाते हैं, जब दौड़कर गए वहां तो क्या हाथ लगेगा, मिट्टी का दीवा। तो बोलते क्या बेकार, धोखा हो गया, यही तो दुनिया है। दुनिया में विषमवादी प्रवृत्ति है, विषमवादी। विषमवादी मतलब विविध प्रकार से सम सम्यक आपको लोग बदन करते समझाते हैं, अरे भगवान तो कभी भी मिल जाएंगे, अपने घर की चीज है, भजन कभी हो जाएगा, माला कभी कर लेना, रात को कर लेना, सोने के पहले कर लेना, है ना, अभी थोड़े मरने वाले हैं, बुढ़ापे में कोई काम तो होगा नहीं, लोग समझाते ना, तो बुढ़ापे में बड़े मजे से कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कारोबार नहीं, बैठे बैठे माला घुमाना, ध्यान करना, सत्संग सुनना, इसको बोलते विषमवादी। भाई अभी आप क्या सोचते हैं कि जवानी में संसार में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है, तो संसार में शांति का अभाव है, शांति आनंद के अभाव वाले संसार में शांति और आनंद को पाने के लिए दौड़ते हैं, जब दौड़कर जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, तो बोलेंगे विषमवादी भ्रांति। और मंदिर में मणि रखी है, बाहर मणि की रोशनी आ रही है, उस रोशनी को मणि मान के दौड़ेंगे है तो भ्रांति, पर मणि मिल जाएगी। तो यहां पर भले ही लकड़ी पत्थर मिट्टी भगवान नहीं हो सकता, परंतु हम वहां पर भगवान की बुद्धि करके दौड़ते हैं, जाते हैं, भोग लगाते हैं, जप करते, ध्यान करते, एक दिन उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाती, जिसको बोलते हैं संवादी। तो दो दृष्टांत देके समझा रहे हैं। अब यहां पर दृष्टांत दिया आपको अनुमान का, प्रत्यक्ष तो समझा दिया आपको, अनुमान ये कर रहे हैं कि आप प्रातः काल ठंडी के दिन में घूमने निकले, नदी किनारे कुछ जंगल पहाड़ हैं, वहां कुहरा जिसको वाष्प बोलते वाष्प है, आपने अपने साथी से कहा देखो मित्र चलो जल्दी चले सामने धुआं है, और धुआं है तो आग भी मिल जाएगी। बैठकर हाथ सेकेंगे, ठंडी को जरा भगाएंगे, मजा आएगा, बहुत ठंड लग रही है। दोनों चल पड़े, है तो वाष्प कुहरा, कुहरे में आपने धूम की बुद्धि कर ली तो भ्रांति हो गया ना भाई। धूम के अभाव वाले उस वाष्प में धूम बुद्धि होना, यह है भ्रम। पर है संवादी भ्रांति, विसंवादी नहीं, संवादी भ्रांति। संयोग से जब वहां पहुंचे तो सौभाग्य से अग्नि मिल गई तो बड़ा आनंद आ गया। इसको अनुमान से समझा दिया, हालांकि आपके मन में भ्रांति है, वाष्प धूम नहीं हो सकता, परंतु वाष्प को धूम मानकर दौड़कर गए पर्वत के पास में, और संयोग से कहीं कोई वहां पर लकड़ी जला के बैठा हुआ था, तो आपका अनुमान सत्य निकल गया। मतलब कि संवादी भ्रांति से भी अग्नि की प्राप्ति हो गई। ऐसे जीवन में आप अनुमान करते हैं कि देखो भाई, मुझे तो भगवान भगवान पर भरोसा नहीं, पता नहीं भगवान क्या चीज है, अनुभव नहीं किया, जाना नहीं। परंतु चलो, लोग जब कहते हैं, लोग जब बोलते हैं, चलो प्रेम पूरी चलते, सत्संग सुनते हैं, लोग कहते बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता, तो आप चल के आए। लोगों ने कहा इतना है नहीं, तेरे को जो है ना बहुत प्रिय है ना मिष्ठान, तो गर्मी से परेशान है, गर्मी में नींद नहीं आती। कुंभ में होता ना, कुंभ में जब बहुत गर्मी पड़ती तो कुंभ में लोग, बहुत लोग क्या करते भाई, कहां धक्का खाना, चलो जो है 5-7 घंटा सत्संग सुनेंगे, एसी की ठंडी ठंडी हवा आएगी, थोड़ा मजा आएगा। इसको बोलते संवादी भ्रांति। वो बेचारा सत्संग के लिए नहीं आया है, वो आया था गर्मी से बचने के लिए, आराम के लिए, थकान को दूर करने के लिए। हम भी कभी ऐसा करते थे, बहुत पुरानी बात है। तो आप तो संवादी भ्रांति कर लिए कि वहां बड़ा मजा आएगा, एसी चल रही है सत्संग हॉल में, उस शिविर में 8 घंटा 4 घंटा बैठेंगे, आनंद आएगा, गर्मी से बच जाएंगे। जैसे वहां पहुंचे वैसे सत्संग सुनने को मिला, तो आपको एक विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। तो विशेष ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान, सत्संग का ज्ञान, वह संवादी प्रवृत्ति हो गई। तो संवादी प्रवृत्ति का दृष्टांत दे रहे कि भाई, चाहे जैसे भी हो, कामना से, लोभ से, मोह से, क्रोध से, द्वेष से, जैसे भी आप अपनी कामना को पूरी करने के लिए भगवान के छत छाया में जाते हैं, तो कामना तो पूरी होनी है, पर साथ में भक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिलेगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसको बोलते संवादी भ्रांति। अच्छा, आप दुनिया में भागेंगे कि भाई दुनिया में चलो, तो वहां जाएंगे तो वहां जाने के बाद दुख मिलेगा, शांति मिलेगी, व्यथा मिलेगी, तो उसको बोलते विसंवादी प्रवृत्ति। वही समझा रहे, क्वचित प्रदेशे स्थितम बाष्पम धूमत्वेन निश्चित्य, किसी देश विशेष में है तो वहां पर वाष्प कुहरा, परंतु किसी ने भूल से उसको धूम समझ लिया, ऐसा निश्चय करके तन मूल प्रदेशे वहां पर जब गया, अयम प्रदेश अग्निमान, यह क्षेत्र अग्नि वाला होना चाहिए, ऐसा समझकर वहां गया। क्यों? धूमत्वात हेतु है, जहां जहां धूम हुआ वहां अग्नि। इस व्याप्ति का निश्चय कहां पर हुआ? देखो, दृष्टांत में व्याप्ति का निश्चय होता है और पक्ष में संशय होता है, तो व्याप्ति के ताकत से हम साध्य को निश्चय करते पक्ष में, या अनुमान का मतलब होता है आपकी भाषा में। व्याप्ति का पहले से निश्चय होता है दृष्टांत में, और पक्ष में साध्य का संशय होता है। तो व्याप्ति के सामर्थ्य से और पक्ष धर्मता से हम साध्य का निश्चय करते हैं। जैसे मान लो आप दूर से देख रहे पर्वत में धुआं उठ रहा, तो पर्वत में अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही, तो अग्नि का संशय है कि भाई अग्नि है या नहीं, संशय है वर्णी अस्ति नवास्ति। परंतु आपके घर में रसोड़े में पक्का है, आपने बार बार देखा कि रसोई घर में धुआं तो अग्नि, ऐसे पर्वत में चुकी धूम दिखाई दे रहा तो अग्नि होना चाहिए। इसी को आप भाषा में बोलते हैं अनुमान। अनुमान कोई बड़ी चीज नहीं, लोग घबराते हैं अनुमान क्या, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो यहां पर भी कोई सामान्य आदमी जंगल में गया, उसने देखा धूम है तो वाष्प कुहरा, पर धूम समझ लिया। वाष्प में धूम बुद्धि होने पर भी जो वहां जाएगा तो अग्नि मिल जाएगी, तो बोलेंगे संवादी प्रवृत्ति हो गई, वही समझा रहे। इति अनुमान, ऐसा अनुमान करके प्रवृत्ते न जो प्रवृत्त है, ऐसे पुरुष के द्वारा दैव गत्या मतलब दैव गति से सौभाग्य से, जैसे कोई एक पक्षी होता है उसको कठफोड़वा बोलते हैं, वो तो अपनी मर्जी से काट को ऐसे छेदता है, पर संयोग से ओंकार बन जाता, संयोग से राम बन जाता, वो राम नहीं लिखता है अपने आप बन जाता। ऐसे संयोग से पर्वत देश में अग्नि मिल गई तो वहां पर क्या बोलेंगे, संवादी प्रवृत्ति हो गई, सफल प्रवृत्ति हो गई। यद अग्नि तत्व उपलब्धेत तदा वाष्प विषयम धूम ज्ञानम संवादी भ्रमो मत, वाष्प विषयक जो धूम का ज्ञान है वो संवादी भ्रम है। तो संवादी भ्रांति के द्वारा भी आपको अग्नि की प्राप्ति हो गई। तो चाहे कैसे भी हो, चाहे आप जो है ना प्रसाद खाने के लालच में, थकान मिटाने के लालच में, है ना बेटा बेटी की नौकरी शादी ब्याह के लोभ से, है ना या अपनी इच्छा पूर्ति के लोभ से या सुख शांति के लोभ से, जैसे भी परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, जब पास आएंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। वो विवेकानंद जी की जीवनी में आती ना, विवेकानंद ने कहा गुरुदेव आप नित्य प्रति भगवती से बात करते हैं, काली से, एक बार प्रार्थना कर दो कि ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए, मैं बहुत मुसीबत में हूं। क्योंकि विवेकानंद जी के पिताजी अल्प आयु में शरीर छोड़कर चले गए थे और बहुत कर्जा भी था, समृद्ध नहीं थे। परमानंद जी ने कहा ऐसा है तू ही जाकर प्रार्थना कर लेना, तो यह बता देता हूं, सिखा दिया। मंदिर में गए, भगवती का दर्शन हुआ, तो गए तो थे कि प्रार्थना करूंगा मैया दुख दारिद्र को मिटा देना, इसलिए गए थे। वो गए नहीं थे कि भगवती का साक्षात्कार आत्मज्ञान होगा, पर जैसे मंदिर में गए आंख बंद की मंत्र जपे, ऐसा आनंद का अनुभव कि बोलना ही भूल गए। पर मन जी ने कहा क्या तूने मांग लिया, बोले गुरुदेव भूल गया, बोले बस। इसको बोलते संवादी प्रवृत्ति। तो आप जैसे ही भगवान के पास आते हैं किसी भी तरह से, चाहे भूल से आओ चाहे स्वार्थ से आओ, परंतु परम आनंद की अनुभूति, लक्ष्य की प्राप्ति का नाम है संवादी प्रवृत्ति। जैसे इस आदमी ने वाष्प को धूम मान लिया था, जब गया तो अग्नि मिल गई तो सफल प्रवृत्ति हो गई। अब आगम का प्रमाण दे रहे, आगम विषयेपी तम दर्शरी, तम मतलब की संवादी भ्रम को दिखला रहे। गोदावर्युद्धकम् गंगो दकम् मत्वा विशुद्धये संप्रोक्ष शुद्धिमाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः गोदावर्योदकं गंगो दकं मत्वा विशुद्धये संप्रोक्ष शुद्धिमाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः। अब आगम का प्रमाण दे रहे कि संवादी भ्रम किसे कहते हैं। गोदावरी का जल है या नर्मदा का जल या कुआं का जल, कुछ भी ले लो, तालाब का जल है तो गोदावरी आदि नदी का जल है, पर आपने इसको गंगा मान लिया कि ये गंगा है, यम गंगा, और गंगा मानकर आप उसको पान करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, संप्रोक्त मतलब कि प्रोक्षण करना जल को ना, ऐसे जल में डालकर ऐसे छींटा डालने को प्रोक्षण बोलते संस्कृत में, प्रोक्षण करना, छींटा मारना, हिंदी बोलते छींटा मारना, संस्कृत में प्रोक्षण बोलते हैं। तो संप्रोक्ष आपने गोदावरी के जल से, बाल्टी के जल से जो शुद्धिकरण किया कि अपवित्र पवित्र होगा सर्वावस्थांग गतो पिवा यो स्मरेत पुंडरी काक्ष सबाया भ्रंतर औषधि। स्मरण करना है, खाली बोलना नहीं, मंत्र को हम बोलते तो है अंदर स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन यह स्मरेत स्मरण करना हमारे चित्त का धर्म है, बोलना वाणी का धर्म है। तो बोलना तो है विष्णु विष्णु या नारायण नारायण, परंतु साथ में मन में स्मरण होना चाहिए। यदि आपने गोदावरी के जल को गंगा जल मान के आप पवित्र पवित्र करते हैं, उससे भी शुद्धि हो जाती तो है तो संवादी भ्रम, फिर भी शुद्धि हो गई। वही लिख रहे गोदावरी उदकस्यापि विशुद्धि हेतुत्वम आगम सिद्धम, आगम से सिद्ध है गोदावरी नदी, कावेरी नदी या कुआं तालाब कुछ भी जो जल हो उसके द्वारा भी। अतः तत्प्रोक्षणादपि विशुद्धि अस्तेव, उसके प्रोक्षण से शुद्धि हो जाती है। अथापि गोदावरी उदके या गंगोदक बुद्धि सा भ्रांतिरेव, गोदावरी के जल में जो गंगा जल की बुद्धि हो तो भ्रांति है। देखो गंगा के अभाव वाले बाल्टी के जल में गंगा बुद्धि अपने आप में भ्रांति है। भ्रांति बोलते अतस्मिन तद्बुद्धि, तो गंगा जल के अभाव वाले गोदावरी जल में या बाल्टी के जल में जो गंगा तो बुद्धि है अपने आप में है तो भ्रांति। तो भ्रांति ज्ञान से भी, भ्रांत प्रवृत्ति से भी शुद्धि हो जाती है। वो तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठोती में गंगा, ये मतलब इसका है। मन शुद्ध है तो आप इस कठोती के जल में गंगा की भावना करके शुद्ध हो सकते, ये आगम का प्रमाण है। अब दूसरा दृष्टांत दे रहे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का। ज्वरेणाप्त सन्निपातम् भ्रांत्या नारायणम् स्मरन् मृता स्वर्गम् अवाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः। ज्वरेणाप्तः सन्निपातम् भ्रांत्या नारायणम् स्मरन् मृता स्वर्गम् अवाप्नोति स संवादी भ्रमो मतः। संवादी भ्रम की कथा से समझा रहे, पहले प्रत्यक्ष दिया प्रमाण, फिर अनुमान का, फिर आगम का, अब पुराण का दृष्टांत दे रहे। ज्वरेणाप्त सन्निपातम, बड़ा भारी ज्वर हो गया। ज्वर जानते बुखार, और कैसा सन्निपात, कफ वात पित्त तीन होते हैं ना अपने शरीर में, जब तीनों बिगड़ जाएं तो बड़ा भारी सन्निपात हो जाता, तो आदमी अक बकाने लगता है, कुछ का कुछ बोलने लगता है, ऐसा सन्निपात हो जाए। भ्रांति से यदि आप नारायण की स्मरण करो, जैसे अजामिल को जब सन्निपात मतलब बुखार चढ़ा, वह जब बुखार बुद्धि में चढ़ जाती तो आदमी आपा खो देता, तो वह ज्वर से पीड़ित होकर अपने बेटे को बुला रहा, हे नारायण जल्दी आओ, तू का है, दवाई ला, जल्दी आ, ऐसा पुकारा किसको, नारायण। तो नारायण वहां पर बेटा अर्थ है, नारायण की अभाव वाले बेटे में नारायण शब्द का प्रयोग किया, और नारायण शब्द का अर्थ भी बेटा ही समझ रहा, अजामिल भगवान ही समझ रहा, परंतु नारायण शब्द के पुकारने मात्र से वैकुंठवासी नारायण के दूत आ जाते, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। अजामिल को यह बोध नहीं कि नारायण शब्द उच्चारण से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, नारायण भगवान का नाम है, ऐसा ज्ञान नहीं, पर ऐसा ज्ञान न होने पर भी नारायण शब्दोच्चारण से उसकी सदगति हो जाती है। भाई आप भोजन का बढ़िया थाल लगाए, अब भोजन कैसा अजीबो गरीब है, कोई भी नया नाम चुन लो आप, कुछ भी नया नाम दे दो, जो मिठाई का नाम नहीं जानता, शक्ल सूरत नहीं जानता, जिस मिठाई का आप नाम नहीं जानते, आकार प्रकार नहीं जानते, कभी खाए नहीं, फिर भी यदि आप खाएंगे तो मिठास का अनुभव तो होगा ही, पेट तो भरेगा ही, आनंद तो आएगा ही, भले आपको मिठाई का नाम नहीं पता है, कभी मिठाई खाए नहीं, अनुभव नहीं है, कैसी बनती यह भी ज्ञान नहीं है, फिर भी मिठाई के खाने से जो मिठाई का स्वरूप है मिठास, आनंद देना, वह तो अनुभव में आएगा ही। ऐसे नारायण अजामिल को भले ज्ञान नहीं है कि नारायण शब्दोच्चारण से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, नारायण वैकुंठवासी का नाम है, ऐसा ज्ञान न होने पर भी उसने नारायण के अभाव वाले अपने बेटे को नारायण शब्द से पुकारा तो उसकी सदगति हो गई। ऐसे ही आपको समझ में आए चाहे न आए, यदि आप आकर बैठ जाएंगे प्रेमपुरी संस्था में तो भी आपका कल्याण होना ही है। ये मुंबई का तीर्थ है, तीर्थ है, तीर्थ जानते हैं ना, तीर्थ श्रीमद् भागवत में वो श्लोक आता ना विदुर जी के विषय में, विदुर प्रसंग में आता, नवै तीर्थाने मृत शैलमया, मिट्टी और शैल जल धारा ही तीर्थ नहीं, यत्र साधव बसंती तत्र अतीर्थी तीर्थम कुर्वंती। भगवान श्री कृष्ण जरासंध का उद्धार करने के बाद विदुर जी के पास जाते हैं और कहते हैं, विदुर चाचा आप जाओ हस्तिनापुर और पता लगाओ कि जो है ना हमारी बुआ कुंती, कुंती पुत्र कैसे हैं। उस प्रसंग में भगवान ने स्वयं ये बात कही कि जो आप तो बिल्कुल महात्मा हैं, संत हैं, आप तीर्थ स्वरूप हैं, आप अतीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले हैं, तो मिट्टी शैल और जल ही का नाम तीर्थ नहीं है। जहां यत साधवा बसंती, जहां सज्जन महापुरुष रहते हैं, सत्संग होता, वह साक्षात चिन्मय तीर्थ बन जाता है। भाई मिट्टी का, जल का, जो क्षेत्र है ना वो तो जड़ तीर्थ है, पर जहां पर सज्जन महापुरुष सत्संग करते हो चिन्मय तीर्थ है। ते मुंबई का जो आपका प्रेमपुरी सत्संग भवन है ये आपका चिन्मय तीर्थ है, ज्ञानमय तीर्थ है। यहां पर आपको भले पता न हो कि ये क्या पाठ चल रहा है वेदांत, फिर भी आप यदि बैठ जाएंगे तो बैठने मात्र से इस संवादी प्रवृत्ति से जरूर आपको उस तत्व का अनुभव हो ही जाएगा। तो अधिष्ठान देके समझा रहे, मृता स्वर्गम वापनोति स संवादी संवादी भ्रम है। टीका देखिए, ज्वरेण सन्निपातम प्राप्त पुरुषः, ज्वर से सन्निपात बुखार चढ़ गया, इदम नारायणम स्मरण मम स्वर्ग साधनम इति ज्ञानम अंतरेणापि। यह जो नारायण का स्मरण है इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसा ज्ञान नहीं है। ज्ञानम अंतरेणापि, ज्ञान के बिना भी, अंतरण बोलते हैं बिना, ज्ञानम अंतरेणापि ज्ञान के बिना भी, सन्निपात प्रयुक्त, सन्निपात बुखार से युक्त जो व्यक्ति है, भ्रम बसात भ्रम के कारण से, या क्रोध बसात क्रोध के बस से, साधारण पुरुषतया चैद्यादिवत नारायण स्मरण। जैसे चैद्य बोलते शिशुपाल को, शिशुपाल को यह ज्ञान नहीं कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण है भगवान है, बेचारे शिशुपाल को यह ज्ञान नहीं कि ये भगवान नारायण है वैकुंठवासी। शिशुपाल तो उनको अपना दुश्मन मानता, मौसेरा भाई मानता, मौसेरा भाई था शिशुपाल, मौसेरा भाई मानता और जो है ना शत्रु मानता। तो शत्रु बुद्धि से, मौसेरे भाई के बुद्धि से हजार गाली दिया, पर हजार गाली बहुत गाली दिया, वो गाली देता रहा, जीवन भर देता रहा ना, वहां तो सौ दिया, इसके आगे पीछे बहुत जीवन भर देता रहा गाली, पर दिया गाली किसको, भगवान को। तो जैसे भी हो कम से कम गाली के ही बहाने द्वेष के ही द्वारा भगवान का चिंतन तो हुआ, उससे उसकी सदगति हो गई। इसका नाम है संवादी भ्रम, संवादी भ्रम था। देखो संवादी भ्रम से प्राप्ति हो गई, पर दुर्योधन को संवादी भ्रम भी नहीं था। दुर्योधन एक ऐसा आदमी निकला, दुर्योधन और रावण को भी ले सकते हैं विसंवादी, संवादी भ्रम भी नहीं था। संवादी भ्रम होता तो भी दुर्योधन का कल्याण हो जाता, वह तो कुछ भी नहीं मानता, उसका चिंतन केवल था राज्य विषय। शिशुपाल का चिंतन था कि मेरा शत्रु है कृष्ण कन्हैया, इसको देखना है। तो शिशुपाल के मन में चिंतन चल रहा श्री कृष्ण का, दोनों मंत्र हो गया ना, शिशुपाल के चित्त से चिंतन किसका हो रहा, श्री कृष्ण का, तो उसकी सदगति होगी। पर दुर्योधन के चित्त से श्री कृष्ण नहीं, राज्य का चिंतन हो रहा, इसलिए उसकी सदगति नहीं हुई बेचारे की। तो हो गया देखो, दुर्योधन हो गया अभी संवादी चिंतन, शिशुपाल का संवादी चिंतन, दोनों कर रहे हैं, पर दुर्योधन का जो चित्त है वो राज्य में फंसा हुआ है, जैसे भी हो युद्ध के द्वारा राज्य हासिल करना। और शिशुपाल का चित्त चिंतन करा श्री कृष्ण का, इसको देखना है, इसको समाप्त करना है। तो संवादी भ्रम से शिशुपाल ने सदगति प्राप्त की। वैसी अजामिल ने चैद्यादिवत नारायणम स्मरण, नारायण की स्मरण करता हुआ मृत स्वर्गम वापनोति, मर की स्वर्ग प्राप्त करता है। नीतिकार ने एक दृष्टांत दिया है, बड़े काम किए। गीदड़ के गुफा में कोई जाए, गीदड़ बोलते सिंगाल, जम्बुक, संस्कृत में जम्बुक बोलते। तो सियार के कोई गुफा में जाए तो उसे क्या मिलेगा? हड्डी, मांस, गंदगी चीज। अब कोई आदमी सिंह के गुफा में जाए तो वहां पर उसे मणि मिलती है। हाथी के गुफा में जाए, मणि, मणि की वहां दृष्टा है। या फणधर सांप है जो फणधारी है, तो सिंह के गुफा में, या जो गजराज है तो उसके गज में मुक्ता मणि मिलेगी। ऐसे ही जैसे कि सिंह, गजराज या फणधर मणिधर सांप आपको मणि नहीं देता, फिर भी मणि की प्राप्ति होती। तो भले ही कुछ भी आपको कोई न दे, पर घर में तो आपको, होटल में, मित्रों के पास, सगे संबंधी के यहां जाएंगे तो गरम गरम चाय मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? आओ आओ बैठो बैठो जी, बहुत दिन के बाद आए, चाय पियो, होगा ना? पर हमारी तरफ कोई विरक्त महात्मा हो ना, हमारे भी लोग हमको हमारी बुराई करते, चाय भी नहीं पूछते। मैं सीधा बोलता कि भाई देखो मैं ठंडा पानी पीता हूं, ठंडा पानी पिला दूंगा, है ना? न चाय पीता, न चाय को पूछता, तो क्या बोलेगा? कहां आ गए, चाय भी नहीं पिलाया। तो भले चाय नहीं पिलाया परंतु कुछ तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो आप यदि प्रेमपुरी आएंगे तो जरूर आपको भले कुछ भी कोई न पूछे, चाय पानी लड्डू मिठाई नहीं पूछे, चलेगा, परंतु आपको वह ऐसी चिंता मणि आत्म ज्ञान मिलेगा जो कहीं नहीं मिल सकता, जिसका नाम है संवादी। और विसंवाद में क्या होता है मालूम है ना? गरम गरम चाय मिलेगी, आओ जी बैठो जी, स्वागत है, बहुत दिन के बाद आए, सुनाओ कैसा क्या चल रहा, इसको बोलेंगे विसंवादी। प्रारंभ में तो मजा आएगा परंतु बाद में यदि आपके मुख से ऐसी कुछ बात निकल गई, भूल चुक हो गई ना, तो वही बात, क्योंकि नियम है शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण शब्द है। कुछ भी हम बोलते हैं तो धीरे धीरे आकाश में घूमता घूमते घूमते उसके पास पहुंच जाएगा तो द्वेष, मतभेद, विवाद खड़ा हो जाएगा। तो संवादी प्रवृत्ति से आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। विषमवादी से प्रारंभ में तो बड़ा मजा आता, आनंद आता, तो दुख परिणाम में दुख हासिल होता, वह बता रहे यहां। देखो टीका में बता दिया, हरीर हरती पापानी दुष्ट चित्तैरपि स्मितः। भगवान क्या करते हैं? तो सारे पाप को दूर करते हैं। दुष्ट चित्तैरपि स्मितः, भले ही आपका अंतःकरण पवित्र है, दूषित है, फिर भी यदि आपने कैसे भी स्मरण किया तो जरूर पाप ताप दूर होता। इसीलिए अपने यहां भारतीय परंपरा थी कि बेटा का, बेटी का, किसी का नाम रखना हो ना तो भगवत संबंधी रखते थे, तो उससे भगवान का स्मरण होता, उच्चारण होता। आकृष्य पुत्रम अघवान यद अजामिलोपी नारायणेति म्रियमाण याय मुक्तिम इत्यादि पुराण वचनेभ्य। अजामिल आकृष्ट मतलब क्रोध किया, अक्रोध से बेटे को बुलाया, बार बार चिल्लाया, नारायण नारायण तू कहां है, सुनता नहीं, मैं मर रहा, मुझे तो गर्म पानी भी नहीं दे रहा है, औषध पान भी नहीं करा रहा। आदमी बुखार में चीखता ना जोर से, क्रोध करता। यहां आक्रोश से शब्द का अर्थ क्रोध से मंद भाव है, मतलब कि ऐसा क्रोध जिस क्रोध में प्यार छुपा हो उसको आक्रोश बोलते हैं। जब क्रोध में तो द्वेष बुद्धि होती है, पर आक्रोश में एक प्रेम प्यार छुपा होता है। आक्रोश आप स्वजन के प्रति करते हैं, जो अपने करीबी हैं उनके प्रति आक्रोश होता है, अक्रोध होता शत्रु के प्रति। दोनों में थोड़ा सा फासला, अंतर है। पुत्र मित्र नौकर चाकर के प्रति आक्रोश करते हैं कि भाई मैं बुखार से परेशान मैं मर रहा, तू जो है ना मुझे अभी तक दवाई नहीं दी, जल नहीं पिलाया, इसका नाम आक्रोश है। तो आक्रोश से आक्रोश से पुत्र को पुकारा, कैसा अघवान जो पापमय अजामिल है, वह भी म्रियमाण जो मरने वाला था, नारायण नामोच्चारण मात्र से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इत्यादि पुराण वचनेभ्य, ये पुराण के वचन हैं, अत्रापि नारायण नामना पुत्र नामत्व ज्ञानम भ्रांतिरेव। यह जो है संवादी भ्रम, नारायण के अभाव वाले पुत्र में बेटा में नारायण शब्दोच्चारण भ्रांति है। इस भ्रांति के द्वारा भी जो पापी अजामिल था उसने अपनी सदगति कर ली। ऐसे ही अज्ञानी जीव नासमझ जीव भी जो परमात्मा के ऐश्वर्य को सामर्थ्य को स्वरूप को नहीं समझता है, वह व्यक्ति भी भाय कुभाय कहते ना, चाहे भाव से कुभाव से अलग है। हाँ अलसा हूं, यदि भगवान का नाम ले जैसे भी ले तो उसका कल्याण ही कल्याण है। अच्छा दुनिया का नाम लो जैसे भी तो उल्टा झगड़ा होगा। मैं पूछे क्यों हमारा नाम लेते, फिर बताओ, पूछेगा ना क्यों नाम लिया हमने, क्या हमने अपराध किया। दुनिया वाले का नाम लो सुन लेगा तो पूछेगा क्या बात है, क्यों नाम ले रहे थे, क्या हमारी चुगली शिकायत कर रहे थे। पर भगवान कैसे, जैसे ही भगवान का नाम लो चाहे समझकर चाहे ना समझ से, इसलिए ऐसा है क्योंकि चैतन्य कभी बेहोश होता नहीं। चैतन्य शब्द का अर्थ है प्रज्ञान घन। आप बोलते ना प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान घन का अर्थ है कि जरा भी उस चेतनता में स्पेस नहीं है, सुई जितना भी जगह नहीं, दूसरी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल चेतन से ठसा ठस है। जैसे बोलते ना घनघोर अंधकार, अंधकार ही अंधकार, ऐसे प्रज्ञान घन है, चेतन निचेतन है। वह तो प्रज्ञान घन होने के कारण परमात्मा कभी बेहोश नहीं होता। हाँ जीवात्मा बेहोश हो जाता बुखार से ज्वर से वासना से कामना से, ये जीवात्मा बेहोश मतलब कि अपने आप को भूल जाता, मैं कौन हूं इस बात को भूल जाता। तो जीवात्मा भले बेहोश हो जाए पर परमात्मा कभी भी बेहोश नहीं होता क्योंकि वह प्रज्ञान घन है। तो चाहे जैसे ही पुकारो, क्योंकि सबकी अंतरात्मा में वही चेतन छुपा हुआ है, तो आप जैसे ही पुकारो चाहे बेटी का नाम लेकर बेटा का नाम लेकर शत्रु का नाम लेकर जब आप पुकारेंगे तो जरूर सदगति होती है। इसी का नाम है संवादी भ्रम। यहां लिख दिया ना कि अत्रापि नारायण नामनः पुत्र नाम त्वज्ञानम भ्रांतिरेव। नारायण नाम का जो उच्चारण है वह बेटे के लिए कर रहा था, तो नारायण के अभाव वाले पुत्र के पिंड में नारायण शब्दोच्चारण स्वरूपतः तो भ्रांति है। संवादी भ्रांति के द्वारा भी अजामिल ने सदगति को प्राप्त किया। ऐसे हम लोग भी संसार में रहते हुए यदि आपको करना तो संवादी भ्रांति से जीना चाहिए, मतलब सबको नारायण रूप सब जो समझो, सबको ब्रह्ममय समझें। तो ऐसा समझने से जब ब्रह्म का चिंतन चलेगा, नारायण के स्मरण चलेगा, तो जरूर एक दिन हमारे जीवन में आनंद का अनुभव होगा। और विसंवादी भ्रम बोलते हैं कि आप विविध प्रकार से संसार के चीजों में सुख बुद्धि कर लेते, संसार के जो पदार्थ हैं, नाम है, रूप है, शब्द है, स्पर्श है, गंध है, जिसको आत्मा का सुख नहीं मिलता, गीता में भी आपने श्रवण किया, उपनिषद में भी, एष आत्मक्रीडः आत्मरति मंत्र आता है ना, यानी कैसा होता, आत्मक्रीडः आत्मरति होता है, उसको बाहर की क्रीडा रति की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मान लो हम लोग अपने मन को बहलाने के लिए क्या करते हैं, है ना गिरीश भाई, आजकल हो चुटकुला को सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, यह क्यों होता है, क्योंकि हमें हमारा जो आनंद स्वरूप है उसका अनुभव नहीं, अनुभव हो जाए तो आत्मक क्रीडा, अपने आत्मा में क्रीडा, अपने आत्मा में रति, आत्मा में गति, आत्मा में प्रीति होती है। तो संसार के विषय में तभी तक रति प्रीति गति होगी जब तक आत्मा का स्वानुभव नहीं होगा। तो संसार के पदार्थों में, पदार्थों से, चाहे शब्द से सुख मिले, चाहे जो है ना रस से, चाहे गंध से, चाहे स्पर्श से, वो विषमवादी है। विषमवादी मतलब उसमें सुख नहीं, सुख की बुद्धि कर लिया तो वह जो है वही मिलेगा। संसार का स्वरूप कैसा, दुख है, अनात्मा है, अंत में दुख अनात्मा हासिल होता। इसलिए शास्त्रकार ने कह दिया कि भाई भोगे रोग भयम, हमारी बुद्धि है कि भोग से सुख मिलता है, बुद्धि है ना, संसार के भोग से सुख मिलता है, परंतु शास्त्रकार कहते भाई भोग बुद्धि से दुख हासिल होगा, पर परमात्मा के चरणों में यदि हम लगा दें इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तो वहां जो हमारी बुद्धि उससे परम आनंद, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।